शान बेहद गंभीर लग रहा था और जिस तरह इंटेंसली आरवी के आंखों में देखते हुए वो सब कह रहा था, आरवी सांसें रोके, आंखें फाड़े, हैरान परेशान सी उसको देखती ही रह गई। वो तो पलकें तक छपकाना भूल गई थी और चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए थे। शान की निगाहें और उसकी बातें ही काफी थीं आरवी के मन में हलचल पैदा करने के लिए। उसके पूरे शरीर में बिजली की तरंगे सी दौड़ गईं। शान ने अपनी बात पूरी की और आंखों ही आंखों में आरवी को वॉर्न करने के बाद उसको छोड़ दिया। आरवी ने अपनी दोनों हथेलियों को बेड से टिका दिया और तुरंत ही हल्का पीछे की तरफ झुकते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। चेहरे पर अब भी घबराहट के भाव मौजूद थे। शान ने एक नज़र उसको देखा और उसकी हालत देखकर उसके लबों पर तीखी मुस्कान फैल गई। वो वापस नीचे बैठ गया और ध्यान से आरवी के पैर को पकड़कर उसकी लगी को एंकल से ऊपर करके देखने लगा। आरवी के पैर का वो हिस्सा एकदम लाल हो गया था। शान की आंखों में अजीब से भाव उभर आए। कहीं ना कहीं उसको पछतावा हो रहा था और खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने ध्यान नहीं दिया। कैसे अपना गुस्सा दिखाने में वो इतना खो गया कि इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर बैठा। उसकी गलती और धक्का देने की ही वजह से आरवी इस वक्त इतने दर्द में है। शान उसके पैर को देखने लगा और अनायास ही उसकी उंगलियां उस लाल हिस्से पर चली गईं। शान के छूने से आरवी को तेज दर्द का एहसास हुआ और उसके मुंह से हल्की आह निकल गई। पर इस बार उसने शान को नहीं रोका, बल्कि अपनी मुट्ठियों को चादर पर कसते हुए अपनी आंखों को भींच लिया। शायद दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी। शान के कानों में जब उसकी आह की आवाज पड़ी तो वो एकदम से अपनी सोच से बाहर आया और सर उठाकर आरवी को देखने लगा। आरवी के दर्द से सने मासूम से चेहरे पर शान की निगाहें ठहर सी गई। वो कुछ पल खामोश सा उसे देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस छोड़ी और निगाहें झुकाकर वापस उसके पैर को देखने लगा। शान ने ठंडी आह भरते हुए उसके पैर को पकड़ा और धीरे धीरे उसे ट्विस्ट करने लगा। दर्द से आरवी ने अपने होठों को दांतों तले दबा लिया ताकि आवाज़ बाहर ना आ सके। यूं ही उसके पैर को हौले से घुमाते घुमाते में शान ने अचानक ही उसको रोज से ट्विस्ट कर दिया। एक कट की आवाज़ के साथ आरवी के मुंह से चीख निकल गई। आंखों के कोर भीग गए और कुछ बूंद आंसू नीचे लुढ़क गए। उसने अपनी आंखें खोल दीं और मुंह से हवा छोड़कर अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करते हुए सिसकने लगी। शान अब उठकर खड़ा हो गया। उसको यूं लोते देखना उसको जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके हाथ अनायास ही आरवी के चेहरे के तरफ बढ़ गए। शायद उसके आंसू पहुंचने वाला था वो, पर बीच में ही उसने अपने हाथ को रोक लिया और कुछ सोचते हुए हाथ वापस पीछे खींच लिया। कुछ सेकंड तक खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर सख्त लहजे में बोला, रोना बंद करो और देखो अब भी दर्द हो रहा है या नहीं। आरवी ने शान की बात सुनकर भीगी पलकें उठाकर उसको देखा, पर बोली कुछ नहीं, बस एकटक उसको देखने लगी। शान ने कुछ पल इंतजार किया, फिर जब आरवी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने खुद ही वापस बैठकर उसके पैर को हल्के से हिलाना शुरू कर दिया। आरवी की आंखें डबडबा गईं और दर्द से तड़पते हुए उसके शान के कंधों पर अपनी मुट्ठियों को कसते हुए भीगे लफ्जों में कहा, रहने दीजिए प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। आरवी की बात सुनकर शान के हाथ रुक गए। उसने निगाहें उठाकर उसे देखा तो आरवी आंसुओं से भीगी आंखों से उसे ही देख रही थी। उसकी मौन रिक्वेस्ट को शान नजरअंदाज नहीं कर सका और उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। शान अब भी आरवी के पैर के पास बैठा था और आरवी उस पर हल्का झुकी हुई थी। अब भी उसने शान के कंधों को थामा हुआ था और दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। तभी अचानक वहां अंशु की मीठी सी आवाज़ गूंज उठी, मम्मा। दोनों की निगाहें अब एक दूसरे पर से हटकर आवाज़ की दिशा में घूम गई। कुछ ही सेकंड बाद नन्ही अंशु अपने नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ते हुए मम्मा मम्मा पुकारते हुए रूम में एंटर हुई और जैसे ही उसकी नज़र वहाँ मौजूद शान पर पड़ी उसके आगे बढ़ते कदम ठहर गए। शान उसे देखकर उठकर खड़ा हो गया और हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, आप रुक क्यों गई? क्या आपको आपके डैडा को देखकर अच्छा नहीं लगा? लगता है हमारे बेटू को बस मम्मा से ही मिलना था। शान की बातें सुनकर अंशु के लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई और वो दौड़ते हुए उसे पुकारते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। शान ने झुकते हुए अपनी बाहों को फैला दिया तो अंशु दौड़ते हुए आकर उसकी गर्दन पर अपनी छोटी छोटी बाहों को लपेटते हुए उस पर चढ़ गई। शान ने अपनी बाहों में उसे थामते हुए अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके गाल को चूमते हुए बोला, हमारा बच्चा कहाँ था अब तक? डैडा ने आपको कितना ढूंढा पर आप मिले ही नहीं। शान का सवाल सुनकर अंशु ने भी उसके गाल को चूम लिया और मोहिनी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, अंशु आज बड़ी दादी के साथ गई थी नानी से मिलने। पता है डैडा, नानी ने अंशु को लव किया, चॉकलेट भी दिए और अंशु ने सब फिनिश कर लिया। अंशु इतनी उत्सुकता से बता रही थी कि शान के लबों पर अनायास ही मुस्कान ठहर गई। जैसे ही अंशु चुप हुई, शान ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, तो आप अपनी नानी से मिलने गई थी इसीलिए इतना खुश हैं? अंशु ने तुरंत ही हाँ में सर हिला दिया। शान ने हल्की नाराजगी जताते हुए आगे कहा, आपको नानी ने चॉकलेट दिए और आपने सब फिनिश कर दिए, अपने डैडा के लिए एक भी चॉकलेट नहीं लाए, दैट्स बैड मैनर्स, शेयरिंग करनी चाहिए थी आपको और आपने सब अकेले ही खा लिया। शान की बात सुनकर अंशु की मुस्कान फीकी पड़ गई। वो कुछ उदास और परेशान सी उसको देखने लगी। फिर उसने भी शान के गाल को सहलाते हुए कहा, सॉरी डैडा, पर वो चॉकलेट बेबी के लिए थी, इसीलिए बेबी ने खा ली। अब जब दोबारा बेबी नानी घर जाएगी तो उनको कहेगी कि आपके और मम्मा के लिए भी चॉकलेट दे दे और बेबी आप दोनों को आकर वो चॉकलेट दे देगी। अंशु की मासूमियत भरी बातें सुनकर शान की मुस्कान गहरी हो गई। उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, हमें चॉकलेट नहीं चाहिए, बस आप हमेशा यूं ही खुश रहिए। शान ने प्यार से उसके गाल को चूम लिया। अंशु की नजर अब आरवी पर चली गई, जो नम आंखों से उन दोनों को देख रही थी। उसकी आंसुओं से भीगी निगाहें देखकर अंशु के भाव एकदम से बदल गए। उसने चिंता भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, मम्मा आप क्राई कर रही हैं, बेबी ने आपको चॉकलेट नहीं दिया इसीलिए आप सैड हो गई। सॉरी मम्मा, बेबी ना भूल गई थी, अगली बार बेबी आपके लिए चॉकलेट बचाकर लेकर आएगी, आप क्राई नहीं करिए, बेबी को भी रोना आ रहा है। अंशु अपने नीचे होंठ को बाहर निकाले मुंह बिचकाए उसे देखने लगी, जैसे अब बस रो ही देगी। शान तो खामोश खड़ा अपनी बेटी को देख रहा था, जो उससे ज्यादा आरवी से जुड़ चुकी थी। आरवी ने जब अंशु का उदास चेहरा देखा तो उसने तुरंत ही अपनी हथेली से अपने आंसुओं को पोंछ लिया और हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, नहीं बेटा, मम्मा रो नहीं रही, वो तो मम्मा की आंख में कुछ चला गया था इसीलिए आंसू आ गए, आप मत रोइए बच्चे, मम्मा सैड नहीं है। आरवी ने अंशु को समझाना चाहा तो उसने शान की गोद से उसकी गोद में लैंडिंग कर दी। पैर पर जोर पड़ने से आरवी के मुंह से आह निकल गई। शान ने तुरंत ही उसको आरवी के पैर से उठाकर साइड में बिठा दिया। अंशु तो अपनी छोटी छोटी आंखों से दोनों को देखती ही रह गई। शान ने आरवी के दर्द से सने चेहरे को देखा और फिर प्यार से अंशु के गाल को छूकर बोला, अंशु बेटा, आपकी मम्मा के लेग में चोट लग गई है तो उन्हें पेन हो रहा है इसीलिए वो रो रही थी, अभी आप उनकी गोद में नहीं बैठ सकते, पर आप सैड मत होइए, मम्मा ठीक हो जाएंगी तो आपको बहुत प्यार करेंगी। शान की बात अंशु ने बड़े ही गौर से सुनी, फिर उठकर आरवी के पास खड़ी हो गई और अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मम्मा आपको पेन हो रहा है।
उसकी फिक्र देखकर आरवी नम आंखों से भी मुस्कुरा दी और प्यार से उसके गाल को छूते हुए मुस्कुराकर इनकार में सर हिलाते हुए बोली, नहीं बेटा, अब दर्द नहीं हो रहा, आप तो मम्मा के हर दर्द की दवा है, आपके छूते ही सारा दर्द गायब हो गया। आरवी की बात सुनकर अंशु के लबों पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसने झट से आरवी के गाल को चूम लिया। आरवी ने भी प्यार से उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। शान उन्हें साथ देखकर चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो आरवी अपने एक पैर को यूं ही बेड से नीचे लटकाए बैठी थी और अंशु को होमवर्क करवा रही थी। शान के हाथ में एक टप था जिसमें गर्म पानी था। उसने टप को सोफे के पास रखा और बेड की तरफ बढ़ गया। आरवी ने उसे अंदर आते देखा तो था, पर उसे नजरअंदाज कर गई थी। शान उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सख्त लहजे में बोला, ये सब छोड़ो और चलकर गर्म पानी से अपने पैर की सिकाई कर लो, दर्द आराम हो जाएगा। आरवी ने नजर उठाकर उसको देखा और अंशु की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए धीमी पर दृढ़ आवाज में बोली, मैंने कहा था मुझे आपकी इस झूठी फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर शान के भाव सख्त हो गए। उसने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे बाप की बर्बादी तुम्हारे ही हाथों होगी और जब तक मैं ऐसा नहीं कर देता तुम्हारी फिक्र मैं करूंगा ही, जिससे तुम चाहकर भी मुझे नहीं रोक सकती, इसलिए बेहतर होगा कि चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मुझे अपनी बात मनवानी भी बहुत अच्छे से आती है। शान ने आंखों ही आंखों में उसको धमकी दी, पर आरवी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने बेरुखी से अपना चेहरा फेर लिया और अगले ही पल वो शान की बाहों में थी। आरवी ने चौंक कर उसे देखा और घबरा कर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? अंशु यही है, कुछ तो लिहाज कीजिए, नीचे उतारिए मुझे। शान ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको अपनी बाहों में उठाए सोफे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, सॉरी स्वीटहार्ट, पर मैंने तो तुम्हें शराफत से साथ चलने को कहा था, पर आजकल तुम किसी और ही दुनिया में रहने लगी हो, इसलिए मेरी प्यार से कही बातें तुम्हें या तो सुनाई नहीं देती या तुम समझना नहीं चाहती, तो अब मेरे पास अपनी बात मनवाने का यही तरीका बचा, और अब तुम सीधे वहीं जाकर नीचे उतर सकोगी जहां मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं, इसलिए अपनी ये बेकार की कोशिशें करने में बेवजह अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। टू बी कंटिन्यूड।